श्री वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे घर में। कल अपन ने 95 माने कल इस पर चर्चा की थी कि जिसमें ये कहा था कि विकल्प करने वाला आत्मा मात्र विकल्पों का ही करता है और विकल्प ही उसका कर्म है। अब इसमें तीन चीजें सामने हैं, एक तो जिसके बारे में विकल्प किया गया है करने का, मारने का, उसे अपने प्राप्त करने का, उसमें परिवर्तन करने का, जो भी विकल्प किया गया है, एक तो जिस कार्य को करने का विकल्प किया गया है, एक तो वो कार्य जो एकदम परद्रव्य की क्रिया है और एक वो जो अपना विकल्प हुआ है वो कार्य, और एक उसको जानने वाला ज्ञान में जो कार्य हो रहा है वो कार्य। तीन काम कार्य है। सारे जगत की क्या पोजीशन है कि वो जानने वाले कार्य को कार्य ही नहीं मानता और विकल्प करने वाले कार्य को भी कार्य नहीं मानता, वो जो सामने जो करने का विकल्प किया था उसको ही कार्य मानता है, यानी एकदम बहिर दृष्टि है वो, जबकि उसमें तीन काम हो रहे हैं, एक जानने रूप काम भी हो रहा है और एक राग का जो रागात्मक विकल्प माने करने का विकल्प भी हो रहा है और एक वहां परद्रव्य में जो कार्य हो रहा है। कर्ता कर्म अधिकार के पूरे अधिकार का निचोड़ ये है कि इन तीन में से तुम कोई एक काम कर सकते हो, यदि तुम उसमें कुछ करने की बात करते हो, ख्याल में है ना, तो वो तो किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। जो कहते हैं विकल्प अकंचित कर है, ये अर्थ में है विकल्प अकंचित कर है, क्योंकि तुमने पर में जो भी परिवर्तन करने की भावना की है और उस दिशा में प्रयत्न किया है, प्रयत्न क्या किया है, कोई बाह्य द्रव्यों को जोड़ना मिलाना निमित्तों को जोड़ना जो भी समझ लो वो किया है, तो कहते उसमें तो कुछ होने ही वाला नहीं है। अब दो चीजें रह गई कि एक तुम्हारा करने का विकल्प और एक उसे जानना, इन दो में से तुम्हें एक काम मिलेगा, दोनों काम नहीं मिलेंगे, बोलो तुम्हें क्या करना। ये बात इन्होंने 95 वाले कलश में कही है कि यह करोति सा करोति केवलम, यस्तु वेत्ति सा तु वेत्ति केवलम, यह करोति नहीं वेत्ति सा कुचित, यस्तु वेत्ति न करोति सा कुचित, कि जो करेगा वो केवल करेगा वो जानेगा नहीं, जो जानेगा वो केवल जानेगा करेगा नहीं, ये बिल्कुल नक्की है। अब बोलो तुम्हें क्या करना है, यदि तुम परद्रव्य के कर्ता बनते हो तो उसके ज्ञाता नहीं बन सकते हो और ज्ञाता बनते हो तो कर्ता नहीं बन सकते हो। ये उस व्यक्ति जैसी है कि एक व्यक्ति एक कंपनी ने कहा कि इस गांव में हमें अपना ऑफिस खोलना है, तो ऑफिस का मतलब होता है कि कम से कम एक क्लर्क, एक चपरासी और एक ऑफिसर, तीन व्यक्ति तो होनी चाहिए, नहीं तो ऑफिस काय का, ऑफिसर नहीं है तो ऑफिस काय का, और वो ऑफिसर ही क्लर्क ही करने लग जाए तो क्लर्क हो जाएगा, वो ऑफिसर नहीं रहेगा, और चपरासी तीन चाहिए। इसलिए उन्होंने इंटरव्यू कॉल किया और एक मैनेजर की नियुक्ति कर दी और फिर उस मैनेजर से कहा कि अभी एक चपरासी और एक क्लर्क रखना है तो उसमें आप भी हमारे साथ इंटरव्यू में बैठो, क्योंकि आपको काम लेना है उनसे तो आप चुनो। तो वो जिसकी मैनेजर पद पर नियुक्ति हुई थी वो कहता है कि भाई साहब ये बताओ कि चपरासी करेगा क्या, कि भाई क्या बात करते हो, एक ऑफिस की झाड़ू लगाएगा, दरवाजे पर खड़ा रहेगा, आप डाक लिखोगे तो डाक खाने में चिट्ठी डाल आएगा, यही करेगा और क्या करेगा। कि भाई इस तरह से काम करें, हम तो गांधी जी के चेले हैं, हम तो अपनी झाड़ू खुद ही लगा लेंगे, और क्या दो चिट्ठी आएंगी जाएंगी तो हम डाक खाने में डाल आएंगे, अभी चपरासी रखने की क्या जरूरत है। भले इसी काम का थोड़ा बहुत मुझे और दे देना कुछ। ठीक है चलो, अभी नहीं रखते हैं चपरासी। बोलो ये अभी ये क्लर्क रख लें, क्लर्क क्या करेगा, कभी आपका अकाउंट लिखेगा, चिट्ठी पत्री लिखेगा, ये सब काम करेगा और क्या करेगा। जरा सा तो काम है, फिर मैं ही कर लूंगा। तो उन्होंने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने तुम्हें ऑफिसर के पद पर चुन लिया, तुम तो चपरासी के काबिल थे। ख्याल में है ना। तो ऐसे ही यहां कह रहे कि तीन काम हैं, कि एक जो तुम्हारे विकल्प होंगे वो, एक जो सामने वाला काम जिस संबंध में विकल्प हुआ है वो, और एक वो ज्ञान। अब तुम ज्ञान करोगे तो ज्ञाता बनोगे, और विकल्प करोगे तो विकल्पक बनोगे, मतलब राग रूप विकल्प करोगे तो रागी बनोगे, और तुम पर की क्रिया करोगे तो पर रूप बनोगे। अब बोलो तुम तीनों, वो कहता मैं तीनों ही बनूंगा, मैं पर में भी करूंगा और मैं राग की क्रिया का भी कर्ता बनूंगा और मैं जानने का भी काम करूंगा। तो इसमें कलश में उन्हें घोषणा कर दी कि जो कर्ता वह केवल कर्ता ही होवे, मैं खत्म, और जो जाने वह केवल ज्ञाता ही होवे, वो सिर्फ जानेगा। जो करता है वह कुछ भी नहीं जानता है, और जो जानता है वो कुछ भी नहीं करता है। ये नियम है, इस नियम के अनुसार ज्ञानी ज्ञान क्रिया का कर्ता बनता है, राग क्रिया उसमें होती है वो उसका कर्ता बनता नहीं है, और पर में जो क्रिया होती है वो स्पष्ट रूप से जानता है कि इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अभी ये जो ये कहा ना कि पर में हमारा कुछ भी नहीं करते हैं, तो अब इसे बंध के संदर्भ में घटित किया कि कहते हैं जब पर में हम कुछ करते ही नहीं हैं, तो पर में जो बिगाड़ सुधार हुआ तो उसके कारण हमें बंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जब वो किए ही नहीं है अपराध तो उसका बंध हमें क्यों हो। तो ये बिल्कुल न्याय है, ठीक है राज। फिर कहा कि वो राग नामक जो कार्य हुआ उस रूप तुम परिणमित होगे तो वो तुम्हें बंद होगा। अब जो राग विकल्प हुआ ना, अज्ञानी जिसका कर्ता बनता है, वो ये कह रहे कि वो अकिंचित कर है, वो विकल्प है, वो कैसा है, अकिंचित कर है, तो माने वो कुछ भी नहीं करता है उसमें। तो कहते फिर उसका कोई लाभ हानि नहीं है, कि नहीं ऐसा नहीं है, वो तुम्हें बंध तो कराएगा। देखो कैसी विचित्र बात है, तुमने उसे मारने का भाव किया तो वो सामने वाला तुम्हारे भाव करने से मरेगा तो नहीं, लेकिन तुम्हें बंध अवश्य होगा। तो इस दृष्टि से वो कार्यकारी है कि डबल नुकसान हुआ, हम पर में करना चाहते थे तो पर में तो कुछ हुआ नहीं, हम अपना को कुछ नुकसान नहीं होने देना चाहते थे इसलिए तो पर को मारना चाहते थे, पर का बुरा करना चाहते थे पर अपना बुरा हुआ। कितनी वस्तु स्थिति कितनी स्पष्ट है। इस जगत के जितने भी प्रयत्न हैं, यदि अपन इस सिद्धांत को एक दफे गहराई से समझ लें तो वो कितने निरर्थक हैं, ये बात हमारे समझ में आ सकती है। क्योंकि हमारा जो हमने जो भाव किए हैं दूसरे के भले बुरे करने के, उनसे और दूसरे के भले बुरे होने का दूर का भी संबंध नहीं है, क्योंकि उसका भला बुरा होगा और कर्म फलोस्वी को भी माने तो उसने जैसे कर्म बांधे होंगे वो जैसे उदय में आएंगे वैसा होगा, तो वो निमित्त तो उसका कर्म उदय हुआ और उपादानगत उसकी योग्यता है और दोनों काम उसके उसमें ही निपट गए। समझे? अब हमारे सुबह से शाम तक ईमानदारी से हम देखें कि कितने विकल्प निरंतर हमारे पर के संबंध में होते रहते हैं, उनके अच्छा हो गए उनका बुरा हो गए, और अकेले विकल्प नहीं बल्कि उस दिशा में जिसे अपन प्रयत्न कहते हैं ना, कोशिश भी करते हैं इसकी यहां भड़ाना, उसको ये कहना, उसको भड़काना, उसको गलत रास्ते पे चला देना, जो भी समझते तो उसकी लाइट बुझा देना, फिर जो भी हम पर बनता है वो हम प्रयत्न भी करते रहते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि उसमें तेरे इन प्रयत्नों से कुछ भी नहीं होता, बल्कि तेरा परमे कर्तृत्व का जो अहंकार है वो और विकल्प है वो उन दोनों से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का और चातुर्मोह संबंधी सारा कर्म तेरे को निरंतर बनता रहता है। कितने सब बिल्कुल निरर्थक काम है। अब ज्ञानी की भूमिका में, ये तो अज्ञानी की बात हुई कि अज्ञानी जिसका भला बुरा करने की सोचता है उसमें कुछ नहीं होता और बुरा भला करने के भाव के कारण खुद को बंद होता है। अब ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञानी के पर का भला बुरा करने का भाव तो है ही नहीं, इसे हम बोलते हैं मिथ्या तो अनंत अनुबंधी संबंधी विकल्प तो है ही नहीं, इसलिए उनका कर्ता होने का उसका भोक्ता होने का तो सवाल ही नहीं है। अब जो चारित्र मोह के उदय में विकल्प होते हैं वो तदनुसार परिणमन भी होता है। परिणमन माने आत्मा का परिणमन तो वो भाव होना ही हो गया ना, माने शरीर की क्रिया का, माने पौद्गलिक बाह्य संयोगों का जो परिणमन होता दिखाई देता है वो ज्ञानी जीव को, तो उस वो जो जड़ की क्रिया का परिणमन हो रहा है उसका तो वो करता धरता है ही नहीं, तो निरंतर मात्र भी पुण्य पाप का बंध उससे नहीं होता, न पुण्य बनता है और न पाप बनता है। लोगों को बहुत गले उतरना बहुत कठिन काम है। जब मैं पूजा पर घटित करता हूं ना तो ऐसा बोलता हूं कि इस थाली में से आष्ट द्रव्य आपने एक एक छंद बोल के एक एक उंगली बोल के और इस थाली में माल ट्रांसफर किया, समझना। तो कहते हैं कि वो माल जो ट्रांसफर हुआ उससे तुम्हें रंच मात्र भी न पुण्य या पाप कोई कर्म का बंध नहीं होता। अब ये गले उतरते किसी को ये कह रहा, समयसार कह रहा, समयसार का ये कलश कह रहा, इस कलश का ये अर्थ है कि किसी के गले नहीं उतरती ये बात। तो फिर ठीक है हम वैसी पूजा बोल लें तो फिर हमको तो वैसे ही लगेगा ना, उसका तो लगने ही नहीं था, वो अच्छे चावल नहीं बुरे चावल ले आए, वो चाय जैसे ले आए, क्यों ऐसा विचार करता है। तो कोई भी ज्ञानी कहेगा नहीं नहीं सावधानी रहना चाहिए। अब फैक्ट ये है इस सावधानी के बहाने फिर मिथ्यात्व का पोषण मत करो। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का है करो चाहे मत करो, लेकिन ये बात 100% नक्की और पक्की है कि उसके कारण तुम्हें रंज मात्र भी पुण्य पाप बनने वाला नहीं है। अब जो वे भाव हुए समझना, एक स्टेप और बीच में ले लेता हूं कि ठीक है फिर हम द्रव्य नहीं चढ़ाएं, फिर तो हम बस मुंह से ही बोल दिया करेंगे और हाथ जोड़ लेंगे भगवान के, क्या धारा जी? तो वो कहते हैं ये भी तुम्हारी वो द्रव्य ही पूजा थी, ये हाथ भी द्रव्य है जो तुमने जोड़ लाए, इसके कारण भी रंच मात्र पुण्य पाप तुम्हें बनने वाला नहीं है। ये तो हम आए हैं हाँ भाई साहब इनसे ये भी जड़ की क्रिया है, तो अकेले बोले ही ले बस खत्म है। तो बोलना भी भाषा बनाना का काम है, वो भी जड़ की क्रिया है, उससे भी रंज मात्र भी पुण्य पाप का संबंध नहीं है। अब उनने तुम उसी में तुमने द्रव्य भाव दोनों घटित कर लिए, भाव तो कहीं था ही नहीं। एक तो बोलने रूप क्रिया जड़ की थी, और यहां का माल यहां ट्रांसफर करने रूप क्रिया जड़ की थी, हाथ जोड़ने रूप क्रिया भी जड़ की हुई। अब आपने के भाव हुए माने भगवान की भक्ति के शुभ भाव हुए, है ना, भगवान की भक्ति के जो शुभ भाव हुए, अब वहां आ गए माने एक एक चीज तो जीरो हो गई। अब वो कहते हैं जो भाव हुए हैं तो यदि तुम्हारी उसमें कर्तृत्व बुद्धि है तो उससे पुण्य जो थोड़ा बहुत बनेगा बनेगा, कि नहीं बनेगा ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व का अनंत पाप बनेगा। साबरा जी गणित बहुत विचित्र है, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व के पाप आप क्या है निगो मिथ्यात्व के उदय से जाते हैं, मिथ्यात्व के उदय में जो कर्तृत्व बुद्धि का जो पाप है ना वो बंधेगा। अब यदि ज्ञानी है कोई, अब वो भी तीनों काम कर रहा है, कौन थाली का माल भी थाली में जा रहा है, वो छंद भी बोल रहा है, उसके भक्ति रूप शुभ राग के भाव भी हैं, और वो जान भी रहा है कि पर की जड़ की क्रिया का मैं करता हूं ही नहीं, और ये भाव भी विकार हैं मेरे नहीं है, ये उसकी पोजीशन है। अब उसको क्या होगा, तो कहते जैसे अज्ञानी को नहीं हुआ ना कुछ जड़ की क्रिया से, उसने किया तो भी कुछ नहीं हुआ ज्ञानी ने, और नहीं किया तो भी कुछ नहीं हुआ उससे, है ना। मुंह से बोले तो वो भी जड़ की क्रिया, उसके लिए जड़ की क्रिया है, वही नियम लागू हुआ जो पहले लागू हुआ था। अब वो जो स्वभाव हुए उनसे कदाचित जैसे उसे सामने वाले को पुण्य बना था, इसे भी उससे थोड़ा अच्छा बन जाएगा भाव में, लेकिन उसकी जो वो मान्यता है कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, वो मान्यता कर्म काटेगी, वो पूजा के काल में भी कर्म काटेगी, माने क्या 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होने देगी, तो वो संवर हुआ और पुराने कर्म उदय में आकर खिरेंगे, वो निर्जरा हुई और शुद्धि की वृद्धि होगी, वो भाव निर्जरा हुई उसके ही काल में। ये इसका सीधा सच्चा शास्त्र के हिसाब से गणित है, समय सार के हिसाब से गणित है, करुणानियों का भी यही गणित है, कल में ही ना। अब आप सोचो सब तो कहते हैं ठीक है हम ये नहीं करेंगे नहीं करेंगे, करो चाहे नहीं करो, जब हम कह रहे उससे कुछ हुआ ही नहीं तो चाहे जो कुछ करो चाहे नहीं करो उससे क्या होता है, क्यों क्यों हम सुबह उठ के मुर्गा बनेंगे एक घंटा तक, और फिर एक घंटे तक उठक बैठक लगाएंगे, फिर एक घंटे पर बेंच पर खड़े रहेंगे गुरु जी के कहने से, तो उससे आपको कितनी पढ़ाई हो जाएगी, कितना ज्ञान का लाभ हो जाएगा, कितने नंबर आपकी परीक्षा में बढ़ जाएंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे ना, तो नहीं खड़े हो नहीं हो खड़े तो भी नहीं बढ़े, फिर कहने का मतलब उससे क्यों हम नहीं, नहीं, नहीं फिर करना तो चाहिए ना, फिर करना तो चाहिए ना, क्यों फिर करना चाहिए। यहां पर ये कह रहे करना चाहिए का सवाल है तुम कर सकते हो कि नहीं इस पर विचार करना है, और वो कहता करना चाहिए कि नहीं इस पर विचार करता है, क्या हुआ आराध बोलो क्या अंतर समझ में आया, क्यों हम तो ये कह रहे कि तुमने किया ही नहीं है कर ही नहीं सकते हो, ठीक है हमने आपकी बात मान ली कि हमने किया ही नहीं है हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमें करना तो चाहिए ना, अरे चाहिए कहां से लाए, मैंने वो अहिंसा वाले लेख में सेमिनार में उदयपुर में यूनिवर्सिटी में बोला था कि सब लोग इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करने को तैयार हैं कि जीवों की हिंसा करना चाहिए कि नहीं, और सभी एक मत हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई इस बात पर विचार करने को तैयार ही नहीं है कि कोई किसी जीव को मार सकता है कि नहीं। आप समझ रहे हैं ना, जैन दर्शन की जो अहिंसा है उस अहिंसा में मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए इस पर तो सारा विचार हो रहा है, लेकिन मार ही नहीं सकता। पहले ये सिद्ध तो हो कि मार सकता कि नहीं, और मार सकता है ये सिद्ध हो जाए तब चाहिए कि नहीं चाहिए वाली बात होगी। क्यों है? तो सचमुच 75 विद्वान थे जिनमें एन उपाध्याय, अगरचंद नाहटा, मालवड़िया, बड़े बड़े विद्वान जो हिंदी साहित्य टॉप के माने जाते हैं, वो सब ऐसा देखते थे ऊपर से नीचे कि ये कहां से कौन 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 देश से आदमी आ गया है जो ये बात कर रहा है, है? तो मुझे ये आश्चर्य होता था कि ये कैसे बड़े बड़े विद्वान हैं कि ये मुद्दा जो असली उठाया है ये इनको मुद्दा ही नहीं लगता है। अब ये एक और नई खराब पद्धति चली है, बातें तो साफ सब करते हैं, करता कोई नहीं है, करना चाहिए, बातें तो सब करते हैं, करता कोई नहीं है, आचरण में कोई नहीं लाता है, बातें सब करते हैं, बातें। अरे भाई, अब जब मार ही नहीं सकते हैं तब अब वो अगर मारना नहीं चाहिए फिर आचरण में नहीं लाते हैं, मैंने मारना नहीं चाहिए अब उसे आचरण में लाओ। अब वो बुक मार ही नहीं सकता है, यानी जो फंडामेंटल है उस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है, हर एक की ये शिकायत है, आचरण नहीं है, आचरण नहीं है, आचरण नहीं, आचरण किसे कहते हैं, आचरण क्या है हम जानते ही नहीं है, बस एकदम है। तो चार्थ धारण तो करना पड़ेगा ना मोक्ष जाने के पहले, साधु तो बनना पड़ेगा ना, कि हाँ बनना पड़ेगा भाई, आगामों के संतोष हो गया। तो क्या संतोष हो गया, हम ये कहते हैं कि साधु किसे कहते हैं तुम ये जानते हो पहले, तो मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं होगा, लेकिन मुनि धर्म क्या है इसका पता है पहले, उस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। देखो जो पिछले कलश में ये बात कही थी ना उन्होंने, जो दो में से एक बात सुनो, तुम करता हो कि ज्ञाता, कि जो क्या बनना है ना, कि हम दो नहीं, हम करेंगे भी और जानेंगे भी कि नहीं हो सकता। कर्ता बनोगे तो ज्ञाता नहीं रह सकते, और ज्ञाता बनोगे तो कर्ता नहीं रह सकते। अब ज्ञाता माने सम्यक दृष्टि और कर्ता माने मिथ्या दृष्टि। अब वो कहता हम दो ही बनेंगे, माने हम करेंगे भी और जानेंगे भी, माने हम सम्यक दृष्टि भी रहेंगे और मिथ्या दृष्टि भी रहेंगे, दो ही करेंगे क्यों ने? अब देखो वो आचार्य कहते हैं कैसा गजब की बात है, जप्ति करो तो नहीं भासतेंता, जप्तौ करो तिश्च न भासतेंता, जप्ति करो तिश्च तथो विभिन्ने, ज्ञाता न करते तटस्थतम च। कि मुझे जप्ति क्रिया में करोति क्रिया भासित ही नहीं होती, जप्ति करोतौ न भासतेंता, करने रूप क्रिया में जानने रूप क्रिया भाषित नहीं होती, और जानने रूप क्रिया में करती करने रूप क्रिया भाषित नहीं होती। देखो मालूम क्या, ये ज्ञप्ति है कर्ता और करोतौ है वो सप्तमी, करने रूप क्रिया में ज्ञप्ति जानने रूप क्रिया भाषित नहीं होती, फिर है ना करोति ये कर्ता और ज्ञप्तौ, ज्ञप्ति में जानने रूप क्रिया में मुझे करने रूप क्रिया भाषित नहीं होती। वो कहता हम दोनों करेंगे, वो कहते हम दोनों क्रियाएं एक में हो ही नहीं सकती। ज्ञप्ति करो तिश्च तत्व विभिन्ने, इससे ये सिद्ध हो गया कि जानने रूप क्रिया अलग है और करने रूप क्रिया अलग है। ज्ञाता न कर्ता तथा स्थितम से, इससे नक्की हो गया कि ज्ञाता कर्ता नहीं है। ये निर्णय है। तर्क क्या है मुझे मालूम ही नहीं पड़ता, वो अनुभव का तर्क है, ये सिर्फ अध्यात्म में चलता है, उसमें नहीं चलेगा न्याय में। शायद सुबह का प्रवचन था ना टीवी पे, उसमें उसमें बताया था ना चार चीजों में से दो चीजें छोड़ दी, कहने था आज था ना, कौन सी थी चार चीजें और दो कौन सी छोड़ दी, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश और आत्मा का अनुभव। तो आत्मा का अनुभव और परंपरा गुरु का उपदेश, ये मैं तर्क सामने वाले के साथ नहीं चलता, क्योंकि तुम कहोगे मुझे ऐसा अनुभव हुआ तो सामने वाले कह दे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तुम कहोगे कि मुझे अंदर से ऐसा अनुभव होता है कि स्त्री पुत्र कोई अपने नहीं है, वो सामने वाला कहेगा मुझे ऐसा अनुभव होता है कि पक्के अपने हैं, क्या करोगे, अनुभव से अनुभव कर जाएगा। और तुम कहोगे हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा था, तो वो कहेगा हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा था। इसलिए उसके सामने दो नहीं चलते, ये दो चलते हैं आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन खासकर ये चलते हैं, वो नहीं चलेंगे, दो बातें ख्याल में है ना। तो ऐसी यहां ये वो कह रहा है कि भाई अध्यात्म में चलता है, अमृतचंद्र ने वो सब हर एक को वो कहते थे कि मुझे इसमें कोई जीव भाषित नहीं होता, और वो कहते मुझे भाषित होता है, ये शरीर तो आठ लकड़ियों का बना हुआ खाट जैसा है, पुद्गल से बना है, इसमें मुझे कोई चेतन वेतन भाषित नहीं होता, अब वो कहते मुझे साफ दिखाई दे रहा है, वो अनुभव का तर्क है। तो यही वही तर्क यहां दिया है कि भैया हमको तो इन दोनों क्रियाओं में, करोति क्रिया में ज्ञप्ति क्रिया भाषित नहीं होती और ज्ञप्ति क्रिया में करोति क्रिया भाषित नहीं होती, दो में से एक ही हो सकती है ना, करने रूप क्रिया में जानन भाषित ना हो, जानन रूप क्रिया में करना भाषित ना हो, इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो कर। बहुत सरल है ना, एकदम स्पष्ट निष्कर्ष के रूप में जो कर्ता कर्म अधिकार का ही निष्कर्ष है, यानी कौन करता है और कौन कर्म है ये इसका निर्णय करना है। और उन्होंने पहले ही कलश में ये घोषणा कर दी थी जो अभी अभी कह रहे हैं, क्या की थी घोषणा, कर्ता कर्म अधिकार का पहला कलश क्या है, क्यों, एको कर्ता च देह में कर्म को पादयोमी इत्यज्ञानं समितमभिता कर्ति कर्म प्रवृत्तिम, एक आत्मा है कर्ता और कर्म कोपादयोमी, कोपादय क्रोधादिक कर्म, जब क्रोधादिक कर्म बोलते हैं तो भाव कर्म समझना, और जब ज्ञानावरण आदि बोले तो समझ लेना द्रव्य कर्म, जब द्रव्य कर्म की बात करनी होगी तो वे ज्ञानावरण आदि शब्द बोलेंगे, जब भाव कर्म की बात करनी होगी तो क्रोधादिक बोलेंगे। तो क्रोधादिक मेरे कर्म हैं, वही भाव हो गए ना अपने विकारी करने के भाव, ये मेरे कर्म हैं पर मैं इनका करता हूं, एको कर्ता चिदेह में, एक चैतन्य आत्मा है कर्ता, कर्म कोपादयोमी और क्रोधादिक है मेरे कर्म, ये क्या है, इति अज्ञानम, ऐसी अज्ञानियों की मान्यता है, इति अज्ञानम समित मभता कर्तिम प्रवृत्तिम, ये अज्ञानियों की कर्ता कर्म संबंधी प्रवृत्ति की मान्यता है, इसे समता अभिता समय तुम, मैंने चारों तरफ से समन करती हुई जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, मैं उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार करता हूं, ये पहले कलश में बात कही थी। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कह रही थी कि मैं करता हूं, रागादिक भाव मेरे कर्म है, इसका नाम है अज्ञान, और इस अज्ञान को नाश करना वाले ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूं। और यहां भी यही कह रहे कि क्रोधादि भाव माने विकल्प, पर मैं करने धन्य के विकल्प, ये है कर्म और भगवान आत्मा है कर्ता, ये सब हमें मालूम नहीं पड़ता, मैं तो ज्ञाता हूं, क्योंकि करोति क्रिया में ज्ञाता ज्ञान क्रिया और ज्ञान क्रिया में करोति क्रिया भाषित नहीं होती। तो बराबर वहां मिलान किया ना उनने, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वो उन्होंने समापन में ये कह रहे कि इस तरह हमने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञाता ज्ञाता है और कर्ता कर्ता है। अब दो में से आप एक ही बन सकते हो, ज्ञाता बन सकते हो या कर्ता, काय के रागादि विकारी भावों के, मिथ्यात्रुपी विकारी भावों के, इनके पर के तो सवाल ही नहीं है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये जो मानते हैं ना हम पर के कर्ता नहीं है, ये पर में कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन जो ये मानते हैं कि हम करते हैं वे तो करते होंगे ना। कहते पर के मामले में जो मानते हैं वे भी नहीं है करते, और जो नहीं मानते वे भी नहीं करते। अब राग के मामले में सुनो, राग माने मिथ्यात्व अज्ञान असंयम सब, ये राग के मामले में जो मानते हैं कि हम इनके कर्ता हैं उनको अशुद्ध निश्चय में कर्ता कहता है। जो मानते हैं वो अज्ञानी को कहा ना अज्ञान आपका कर्ता, और जो नहीं मानते हैं उनको अकर्ता कहते हैं, और अकर्ता माने ज्ञाता। अब अकर्ता और ज्ञाता में क्या फर्क है? अकर्ता में तो सिर्फ उसके कर्तृत्व का निषेध आया, लेकिन वो क्या करता है ये नहीं आया। तो फिर वो कर्ता नहीं है, ज्ञाता है, तो इसमें वो उसका ज्ञान भी आ गया। आप समझिए ना, कर्ता से अकर्ता कहने में तो क्या नहीं करता है ये आया, वो करता क्या है। फिर ऐसा लगता ना हमें कि हम पर में भी कुछ नहीं करें और राग द्वेष अपने विकार में भी कुछ नहीं करें, तो फिर करें क्या? कि तुम्हारा जानना देखना स्वभाव है ना, तो वो करो ना। तुम इसे काम चाहिए, इसे बिना काम के नहीं रह सकता है, तुम जानो देखो करो। अभी आपको ऐसे यहां ये ड्यूटी लगा दी कि आप यहां पर ऐसे ये लगाओ, ये करो, ये झाड़ू लगाओ, सफाई करो, बेंच लगा दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, सब बता दी ना। फिर एक कह दिया एक आदमी को, भाई आप यहां से खड़े रह के शांति से एक घंटे तक प्रवचन होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और इसको जरा आप ध्यान रखो देखो। तो ठीक है देखूंगा तो मैं, लेकिन काम तो बताओ मैं करूं क्या। कभी ये बहुत बड़ा काम है देखना, क्या ये तो इसको देखने वाला काम होगा क्या? यदि हम उससे कह दें कि तुम अपने आत्मा का ध्यान करो, तुम अपने को देखो क्या, तो ये कहेगा कि मेरी नौकरी छुड़ाना चाहते हैं, ये मेरे को क्षेत्र से हटाना चाहते हैं, मेरे को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं ना, क्योंकि इनकी सीट में छीन लूंगा। इसलिए जे मतलब तुम कहोगे तुम अपने को देखो क्यों, ये तो किसी की समझ में ही नहीं आता है। तो वो यहां ये कह रहे हैं कि भैया सहज ज्ञाता दिष्टा, जानना देखना काम है ना। कि वो तो कहता कि नहीं नहीं ठीक है, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन और भी बताओ मैं डबल करूंगा। तो वे कहते डबल कर ही नहीं सकते हो ना, जो पढ़ने के पर का वो बेकार के करने का भाव करोगे तो उतना ही ज्ञान क्रिया में तुम्हारी कमी आ जाएगी। अंतर मुहूर्त को ही तुम अकेली ज्ञान क्रिया के करता रहो, ख्याल में सुनना, तो केवल ज्ञान हो जाए। बोलो ये कितना बड़ा काम है, लेकिन इसे काम नहीं देखता। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं कि ठीक है चलो एक काम तो मिल गया मुझे, क्या कि अब मैं सब ज्ञाता दिखता रहूंगा, सबको जानता दिखता रहूंगा क्या। तो कहते हैं कि तुम करता तो तू है ज्ञान क्रिया का, लेकिन तुझे करना कुछ नहीं है क्या? कह रहा बाबू जी क्या नहीं करना कुछ नहीं, ज्ञान ही नहीं करना है तुझे। अब घबराता है, अभी तो ज्ञान करने को बोला था ना कि ज्ञान भी नहीं करना है। क्या क्या कह रहे अब, क्या कह रहे कि तुम करता तो तुम ही रहोगे ज्ञान क्रिया के, समझना। तुम्हारा वो कर्तृत्व नहीं छीन ले, वो हम कर्तृत्व किसी दूसरे को नहीं सौंप रहे, लेकिन तुम्हें करना कुछ नहीं है। क्यों? कि वो ज्ञान तो सहज होता है। क्या धन कुमार जी, वो जानना तो होगा, तुम्हारा स्वभाव है भाई साहब। एक दीपक से कहो कि तुम कुछ नहीं करो, जलते रहना। उसे जलने को क्या करना, जलना तो उसका जीवन है, जलना तो उसका स्वभाव है ना। क्यों? तुम्हें जानने देखने के लिए क्या करना है बोलो। इसलिए तुम्हें क्या कर रहे हैं जी, तेरे जानने के जो कर्तृत्व का बुगदा है वो निकाल ले, जानना नहीं छीन ले। तुझे ऐसा लग गया एक एक काम मुझे करना है, ये मुझे करना है, तो कहते कर्ता तो तू ही है, वो तू ही करेगा, तेरी परिणति की पूरी जिम्मेवारी तेरी ही है, लेकिन तुझे करना कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक सहज क्रिया है, वो होगा, होता ही है, जानना। इसका नाम अनंत पुरुषार्थ है, इसका नाम वो पानी का उदाहरण देकर यहां से तोड़ फोड़ करके ला करके और उसी का उसी में मिलाना, कहते बोलते हैं ना, तो ये है, उसी को उस रूप में प्रस्तुत किया था। सुनिए, वो जानने तो के जानने का क्या करना, जानना तो मेरा स्वभाव है, अग्नि को जलना है, अरे अग्नि का जलना तो उसका स्वभाव है, उसे स्वभाव के अग्नि के लिए क्या करना है बोलो। कि सहज ज्ञाता दिशता रहना है, जो जानने रूप प्रणमन हो रहा है और यही मेरा स्वभाव है और उसमें ही तेरे को रहना है ना। तो फिर वही प्रश्न खड़ा होता है कि भाई तुम ऐसा कह तो रहे हो, लेकिन फिर ये काम कौन कर जाएगा, फिर ऐसा कैसे होगा, फिर ये कैसे होगा, फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर ये नहीं होगा। अभी आपको क्या पता, आप तो उपदेश दे रहे हो, लेकिन सुबह 5 बजे उठ के हमको एक एक कमरे कमरे में जा जा करके सबको जगाना पड़ता है, सबको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, 3 दिन तक हम नहीं करें तो सब चिड़िया हैं उड़ जाएंगी। मतलब वो अच्छा, यदि सचमुच तू सहज ज्ञाता दिष्टा रहना चाहता है और रह सकता है और रह गए हैं तो फिर छोड़ दे, तो फिर ये सब होगा क्या नहीं, ये होगा। तुम सहज ज्ञाता दिष्टा रहे तो तेरा काम तो क्या है कि जानते रहना है ना, तो ठीक है। फिर ये नहीं हुआ रमेश जी क्या, तो फिर क्या होगा कि तुझे तो तेरे जानने के काम में कहां दिक्कत है, तू जान लेना कि कोई नहीं है, तू ये जान लेना कि कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं बोला, तेरे जानने वाले काम में क्या फर्क पड़ रहा है, तेरे से एक कहां कहा था कि तू ऐसा जानना, जैसा होगा वैसा जानना है ना, जैसा हो रहा है तेरे को तो सहज भाव से वैसा ही जानना है ना। क्यों? तो रमन जी साहब ने और सब शास्त्रों ने आज हमारी अन्ना जी से चर्चा भी हुई थी कि भाई जैसा हो रहा है ना वैसा जानना है ना, चाहे वो होने रूप हो चाहे नई रूप हो, तेरे जानने वाले काम में तेरे को क्या अंतर आया। नहीं नहीं नहीं, फिर इसको नया काम चाहिए, कि नहीं नहीं पर को नहीं जानना अपने को जानना। तो टोलम जी कहते हैं कि तू तो कोई विकल्प मत कर, जो भी जानना हो उसे होने दे, उसको बदलने की कोशिश मत कर, क्योंकि अनंत काल पहले इस समय तेरी ज्ञान का गेय कौन बनेगा वो अनंत काल समय के पहले से नक्की है, और उसके गेय बनने से तेरे को रंच मात्र भी बंद होने वाला नहीं है। चाहे तुम भगवान आत्मा को जान और चाहे उसे जान, घबराना नहीं, उतनी समय निद्रा, यहां तक कि छपक श्रेणी में भी जब तू अंतर्मुहूर्त के पहले में केवल ज्ञान प्राप्त करेगा उस समय भी पर को जानता रहेगा तो भी उतना ही कर्म छपक कर्म क्षय होते चले जाएंगे, और स्व को जान रहा होगा तो भी उतना ही कर्म होते चले जाएंगे। क्यों? क्यों अर्थ संक्रांति होती है ना, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को, एक गुण से दूसरे गुण को, एक पर्याय से दूसरी पर्याय को, द्रव्य छोड़ के पर्याय पर पर्याय को द्रव्य, ऐसा होता रहता है। और वो आत्मा तेजी से आगे बढ़ता रहता है। तो उससे तुझे क्या करना कि पर जानने में आए चाहे स्व जानने में आए, तू तो सहज हो जाना कि नहीं नहीं नहीं, फिर वो आगे तो असंक्रांति नहीं होती है ना, तो नहीं होगी। अगर स्व ही जानने में आ तो अगर स्व जान, तेरे को उसमें कुछ नहीं करना है, समझ गया ना। क्योंकि तो सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा तेरे को रहना है, मैं जानने के सिवा जो तेरा काम तुझे कंजुम में है वो काम ऐसा है कि वो सहज भाव से होना ही होना है। एक वर्ष में तुम 18 वर्ष से 19 वर्ष के हो जाओगे, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ा, चाहे सोते रहो, चाहे चलते रहो, चाहे फिरते रहो, चाहे घूमते रहो, चाहे खेलते रहो, चाहे खाते रहो, चाहे पढ़ते रहो, वो तो बढ़ ही रहा है। तुम 18 वर्ष से 19 वर्ष की तरफ 24 घंटे दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो, कोई कोई क्रिया करने से तुम्हारा बढ़ना रुक जाएगा कि बढ़ना कुछ तेज हो जाएगा कि कुछ कम हो जाएगा, बोलो कुछ नहीं। तो ऐसे ही वो कहते हैं ये सहज ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए ये कर्ता कर्म अधिकार में तुम्हारे माथे से कर्तृत्व का बोझा उतारा है ना। ये दो कलश आज हो गए ना, अब आगे कौन सा है तीसरा कलश, अभी समय नहीं है, कल पढ़ेंगे। अब कौन सा 98 और ये 99, 99 पे खत्म हो गए, 99 का चक्कर खत्म हो जाएगा, कर्म अधिकार में 99 का कलश पे खत्म हो जाएगा ये कर्ता कर्म अधिकार।